आप देखिए कि इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया। मैं एक बुक पढ़ाई, बिल्कुल छोटी सी है, बल्कि अगर आप माइंड ना करें तो आपको दे देती हूँ छुट्टियों के काम में। छोटे से लेक्चर है, 4-5, उसका पेज भी है, ऑनलाइन पे डाल दें, वेबसाइट पे बुक को भी डाल दें, और उसका PDF भी है। रोज का एक आर्टिकल सुन लें, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। मैंने इकट्ठे पढ़ाए हैं तो और बात है, लेकिन मेरा आला मैंने 4 या 5 दिन में वो छोटा सा बुकलेट पढ़ा दिया था, इत्तेहादे मिल्लत के नाम का। किस तरह उम्मत को इस वक्त जरूरत है जुड़ने की। एक एक सबक करके ऑनलाइन, और आप दोनों उसको सुन लें और नोट्स लेके आ जाए अपने साथ। आप देखेंगे कि आपको ये बात साफ तौर पे दिखेगी कि जो चीजें बंदे को जुड़ने नहीं देती ना, उसमें सबसे बड़ी चीज अना होती है, ईगो। और कल बात की थी ना, लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बुन, तो सबसे बड़ी मुश्किल चीज जो लगती है ना अल्लाह के रास्ते में छोड़नी, वो अना लगती है। 10 बातें आपको यहाँ बुरी लगती होंगी, मैं यकीन से कह सकती हूँ, लेकिन आपको माननी पड़ेंगी। नहीं मान सकते तो आप जो मर्जी करें, लेकिन आप देखिए ना कि जब आप किसी चीज को मिसाल है कि गूंथते हैं, तो सारी चीजें मिलके एक जैसी यकजान होती हैं तो आटा गूंथता है ना। और अगर बीच में कुछ चीजें कि हम तो खड़ी रहेंगी, हम तो साबित होंगी, हम तो खाने में नमक की डली बन जाए, वो कि मैं नहीं घुलूंगा, तो जब खाएंगे मुंह में नमक की ढेरी आएगी ना, घुलना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि सहजा चमन में मेरी तलख नवाई, के जहर भी कभी करता है कार्य दरिया की। तो उम्मत को बनाने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। पिछले साल में मैंने एक पढ़ के सुनाया था, मौलाना मोहम्मद शफी हैं, उनका एक रिसाला है तदरीसुल कुरान के नाम पे, तो उसका मई 1998 का शुमारा है, पेज नंबर 9 है। कभी आपको मिला तो पढ़िएगा, मैं सिर्फ लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के सुनाती हूँ। लिखते हैं कि कादियान में सालाना जलसे के मौके पर अनवर काश्मीरी गमगीन थे, सर पकड़े हुए। अनवर काश्मीरी आपको पता होगा, फिकह हनफी के बहुत बड़े आलिम थे, अब दुनिया में नहीं है इस वक्त मेरा गुमान है। तो कहते हैं कि उस वक्त बड़े दुखी थे और कहने लगे कि यार उम्र जाया कर दी। कहते हैं भाई आपने जाया कर दी? वो कहते हैं हाँ सच कहता हूँ, सही कहता हूँ। क्यों? कहा भाई आप तो सारी जिंदगी दीन की खिदमत करते रहे, आपने उम्र कहाँ जाया की? तो कहते हैं हमारी सारी उम्र में हमारी तकरीरों का खुलासा ये रहा कि दूसरे मसलकों पर हनफी मसलक को नुमाया किया जाए। अब इमाम अबू हनीफा हमारी तरजीह के मोहताज नहीं, अल्लाह इनको और इमाम मालिक और इमाम शाफी के मसलक को रुस्वा नहीं करेगा क्यामत के दिन। कब्र में ये हिसाब किताब सवाल नहीं होंगे, हशर में नहीं होंगे कि कौन सा मसलक हक पर था। कब्र में तो मुनकर नकीर भी नहीं पूछेंगे, बरजख में भी नहीं पूछेंगे। और क्या अल्लाह सबके सामने इमाम शाफी और हम्बली और दूसरे उलमा को क्या रुस्वा करेगा? अल्लाह तो नहीं करेगा, ना कब्र में हिसाब ना हशर में इसका हिसाब। कब्र के 3 सवाल, मन रब्बू का, मन रसूलू का, मा दीनू का। कहते हैं जिन बातों का सारी जगहों पे हिसाब नहीं होना, हमने अपने हर दरस में हर बात में लोगों को और ऑडियंस को यही सोच दी कि फिकह हनफी दूसरों से ऊपर है, और दूसरे वाले भी यही करते हैं। बुराइयां फैली जा रही हैं और आज बुराइयों को तो रोका नहीं जाता, अपने और बेगाने मिलकर फैला रहे हैं, मुनकर फैल रहा है, और हम साइड इश्यूज की बहसों में बैठे हैं कि भाई मैंने तो उम्र जाया कर दी। ये देख लीजिए, और ऐसी बीसियों मिसालें मौजूद हैं। एक मौलाना मोहम्मद महमूदुल हसन है, माल्टा में कैदी बना लिए गए थे, कई साल जेल में रहे। जब रहा हो के बाहर आए तो उलमा के साथ उनकी एक मीटिंग हुई, तो कहा सुनाएं शेख साहब क्या हुआ? तो कहते हैं कि जेल की तन्हाई में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत को छोड़कर जुल्म किया, और आज हमारे सारे मसाइल की वजह यह कि हमने लोगों को कुरान और हदीस से अलग किया। मैं वहां ये नियत करके आया हूं कि मैं अब अपनी बाकी जिंदगी कुरान की तालीम को आम करने में लगाऊंगा। वातसिमु बिहब्लुल्लाह जमीअ। कहते हैं कि इस कुंतुम आदा दुश्मन थे, अरबों की तारीख में 1700 जंगों के रिकॉर्ड मौजूद हैं, 1700 वॉर्स मिलते हैं। काम तो कोई था नहीं, बैठते थे, खाते थे, पीते थे और झगड़ते थे, जैसे बच्चे जब फारिग होते हैं तो लड़ते हैं, जब भूख लगी होती है तो रोते हैं, ये दो ही काम करते हैं ना। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने हम सबको इस फिरका वारियत के जहर से बचने का एक नुक्ता दे दिया। अपने आप को ठीक करो और अल्लाह ताला के साथ अपने आप को जोड़ो, और इसके बाद अब करना क्या है? अब देखिए तीसरा दर्जा, दोबारा दोहराती हूँ अभी तक की बातों को। सबसे पहले क्या किया जाए? उम्मत के एक एक फर्द की इसलाह की जाए, उसके लिए कुरान सिखाया जाए, हदीसों को सिखाया जाए, सुन्नतों को आम किया जाए, डे टू डे दुआएं, लाइफ की बातें सिखाई दें। और इसकी जरूरत एक डॉक्टर को भी और एक एमपीए को भी है और एक पीएन को भी है, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। हर एक की इस पे कोशिश की जाए, इसके ऊपर इज्तमाही इंफरादी हर हिसाब से कोशिश की जाए। ये जब हो जाए तो फिर अगला दर्जा उसका क्या होता है कि उम्मत को जोड़ो, मकसद याद दिलाओ, तुम कौन हो। हम दूसरे पारे के शुरू में सूरत बकरा में पढ़ चुके कि वकजालिका जाल ना कुम उम्मतम वसता, तुम्हें उम्मत वसत बनाया। अब इसी बात की मजीद ताकीद आखिरी हिस्से में आ रही है, इस आयत के अगले हिस्से में, आयत नंबर 104। ये है तीसरा काम। अगर आप इन तीनों आयतों के बीच में एक एरो डालते जाएं, सीढ़ी बना लें, फर्स्ट सीढ़ी इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, दूसरी सीढ़ी जो भी हमने पढ़ी जिसको आए के बाद तसिमु बिहब्लिल्लाहि वला तफर्रकू, अब फर तैयार है, सबको मिलाने से एक उम्मत बनाई, सबके बीच में बाइंडिंग फोर्स कुरान और हदीस है, अब करो क्या। आप इस आयत का टॉपिक लीजिए कि करने के काम तीन, क्या वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदून इलल खैर, और तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए, और वयामुरून बिल मारूफ, और नेक कामों का हुक्म दे, और तीसरा वयनहौना अनिल मुनकर, और जो लोग बुराई से रोकें, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। ये है तीन नुकाती एजेंडा। उम्मते मुस्लिमा को नुक्ता दे दिया गया कि अब तुम एक ग्रुप बन गए, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद हो गया, कौल अल्लाह व कौल रसूल तुम्हारी जिंदगी में सबसे ऊपर आ गया, तो अब क्या करो, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, तुम एक उम्मत बन जाओ। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ लफ्ज उम्मत से कौन मुराद है, तो लिखिएगा अगर तो सारे ही मुसलमान आइडियल तौर पर पिछले दो काम कर चुके, तो यहाँ उम्मत से मुराद उम्मत मुस्लिमा है, यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक ही काम करने का हुक्म दिया गया जिसका तذکرہ इधर है, और सहाबा से लेकर अगले कई सौ साल तक ऐसा ही रहा, ठीक है। लेकिन अगर सारे ऐसे ना हो जैसे कि प्रैक्टिकली आज है, तो फिर उम्मत से मुराद क्या है कि जब ऑन दी होल पूरी उम्मत एक गिरोह नहीं बना कि पूरी दुनिया की गंदगी दूर करे, पूरी दुनिया तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाए, तो फिर उसमें इन सारों में से कुछ लोग उठें, साहिबे दर्द उठें, इल्म की रूह फैलाने वाले, खुद को मसलकों और जमातों और गिरोहों से आजाद करने वाले उठें, जिनको अपनी मौत प्यारी है, जिनको कब्र की रात याद आती है, जो अल्लाह से डरने का हक अदा करते हैं, उनको समझ आ गई है कि हमें शहादत हक की गवाही के लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया, तो फिर अब क्या करो, तुम उठो और लोगों की इस्लाह का काम करो। और करना क्या है, तीन काम, यदून इलल खैर। पहला नुक्ता क्या है, अल खैर की दावत दो, बहुत अहम नुक्ता है, इस पे जरा गौर फरमाइएगा। ये क्या है, खैर क्या होती है? आप देखिए कि अल्लाह ताला ने सूरत यूनुस में कहा हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये हर उस दौलत से प्यारा है जिसको वो जमा करते हैं, क्या कुरान। कुरान को खैर कहा गया कुरान में, ठीक है। लेकिन अगर आप अल खैर की तफसीर देखें ना, तो अल खैर से मुराद कुरान व सुन्ना। यहां समझेंगे आप, आज तक हम लोग इस खैर को भी नहीं समझ पाए, शायद कम ही समझे। खैर से मुराद कुरान और सुन्नत है। इमाम बाकिर कहते हैं किससे मुराद कुरान और सुन्नत है। और अगर आप इसमें आगे लफ्ज़ मारूफ को देखें, तो मारूफ क्या है, कुरान और सुन्नत से मवाफकत करती हुई नेकियां, उर्फ है ना, पहचानना, हर वो नेकी जानी पहचानी, शरण अकलन अच्छी हो, दावत देनी है खैर की तरफ कुरान और सुन्नत, हुक्म देना है मारूफ का और रोकना है मुनकर से, मुनकर के नकीरा से इनकार करती है तबीयत, अनरिकग्नाइज्ड थिंग्स। अब जरा इस लफ्जों की खूबसूरती को जरा सा आप और महसूस करें, तो आप देखेंगे कि कुरान ने कितने खूबसूरत अल्फाज इधर इस्तेमाल किए हैं, और वो क्या है कि उम्मत खैर की तरफ लोगों को बुलाए। और इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्ला कहते हैं, खैर से मुराद कुरान और सुन्नत की ताबेदारी है, इत्तेबा करना। अब आप इसको समझ लीजिए कि दावत और तबलीग का जो नुक्ता है ना, जिसकी तरफ लोगों को बुलाना है, वो कुरान और सुन्नत है। अब आप वो कमेंट जो मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाया अनवर शाह कश्मीरी का, उसको सामने रखिए, वो क्या कहते हैं? कुरान और सुन्नत का लफ्ज़ नहीं, हम तो फिकह हनफी का लफ्ज बोलते थे। बात समझिए, बात बड़ी बारीक है, और आपको ना समझ आए तो कोई बड़ी बात भी नहीं, लेकिन दीनदार सुनेंगे तो उनको समझ आएगी ये बात, कि जब हम लोगों को ये कहते हैं कि मुसलमान बनो। आप देखिए ना कि दावत के भी तो दो दर्जे हैं ना, यहाँ दावत की बातें हैं, तबलीग की। एक दर्जा क्या है कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दी जाए, ठीक है, दावत इल्लाह। दूसरी क्या है कि बिगड़े हुए मुसलमानों को दीन पर अमल की दावत दी जाए, जो इस वक्त हो रहा है। सच बताइए कि इस वक्त मुसलमानों का जितना जोर और ताकत अपने ही मुसलमानों को दीन सिखाने पे सर्फ हो रही है, क्या इसका अशरे अशीर भी नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम की दावत देने पे हो रहा है? फारिग ही नहीं हो रहे हम। अभी अपनी फौज ही नहीं तैयार हो रही, अभी तो अपने लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे, अभी तो सूद से बेरगबती नहीं हुई, गैरों को कहाँ दें? यहां अब आपको नुकता समझ आ जाना चाहिए, अल्लाह करे कि ये है वो नुकता। वो कहते ना कि हम पलटे कहाँ से थे, हमने ठोकर कहाँ से कही। जैसे कभी आप कहीं जाए रास्ता भूल जाए ना, तो बाद में आप सोचते हैं कि वो कौन सी जगह थी जहां से मैंने फर्स्ट रॉन्ग टर्न लिया था। ये है फर्स्ट रॉन्ग टर्न, कि हम अभी तक खुद भी दीन नहीं सीख सके, हमारा नुक्ता ही गलत है। हम जमात की तरफ बुलाते, मसलक की तरफ बुलाते, फिक की तरफ बुलाते, हम उस्तादों के नाम लेते, हम बुजुर्गों की गद्दी नशीनी और उनकी बैत और फलां नक्शबंदी और फलां फलां, कई कई नाम है हमारे इतने लंबे साहब के ला के, मैं उनका मुरीद, मैं उनका, अच्छा भी हाँ अल्लाह तो है, ये अल्लाह ही की तरफ बुलाते, लेकिन हमारी डायरेक्ट बात किसी से नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ एक मनहज दिया कि उम्मते मुस्लिमा की जिंदगी दावत और तबलीग में है। जिस समय जो हैसियत खून की है ना, यही इस पूरी दुनिया में मुसलमानों की है। जिस समय जब खून रुक जाता है ना, तो मौत है, सबको पता है। दिल धड़कने से पता है मौत क्यों होती है? शायद पता ही होगा सबको, सबको पता है कि बीमार होते हैं, कुछ नहीं जी रहे, जिसे दिल खत्म बंद खत्म है ना। भाई दिल की क्या ताकत है, वो क्या करता है? इतना सा मुट्ठी भर दिल है, एक संभाले ही नहीं जाता हमसे। दिल रुकता है ना तो खून रुक जाता है, और जो खून रुका तो जिस्म में जहां जहां था, और खून के जरिए ऑक्सीजन जाती है, विद इन फ्यू सेकेंड्स दिल के रुकने से मौत, एक एक उस मरना शुरू होता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, जो उसकी सोल थी, जो उसकी घसा थी। जिस तरह खून रुक जाता है ना तो जिस्म की मौत है, इस तरह उम्मत मुस्लिमा की मौत दावत और तबलीग का काम है। मैं सोचती हूँ क्यों ये बात हमें हमारे माँ बाप और उनके माँ बाप ने नहीं सिखाई। उम्मते मुस्लिमा का पैदा होता बच्चा इस फर्ज के बोझ तले दबके आता है कि वल तकु मिनकुम उम्मतु यदून इलल खैर व यामरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर। पैदा होते बच्चे के कंधों पे इस इंसानियत का बोझ है कि जो रब से दूर है उनको रब से मिलाओ, जिनको पहचान नहीं, जो शिर्क में फंसे हुए हैं, जो किसी बुत के आगे बैठे हैं, जो किसी कब्र के आगे बैठे हैं, किसी कुएं के आगे बैठे हैं, उनको लाओ कि अल्लाह के बंदो यदून इलल खैर, रब की तरफ जाओ, खैर का मालिक तो वो है। लेकिन आपको सच बताएं, आप ही तो माई है ना, आप सब अपनी अपनी पिछली समझे के 10-15 साल जिंदगी पे गौर करें। बच्चा तो आपको भी मिला ना, यानी जिसके बच्चे आज 15 से 20 साल की एज के हैं, है ना, आप में से बहुत सारे लोगों के माशाल्लाह, कब आपने उनको ये लोरियां दी थी कि बेटा यदून इलल खैर, तुमने मेरे बेटे ने बड़े होके खैर को फैलाना है, कुरान सुन्नत, मसलक नहीं, जमाते नहीं, गिरोह नहीं, अल्लाह से जोड़ो, रसूल से जोड़ो, बुलाओ अपने दोस्तों को। और खास तौर पे मैं फिर दुख ऐसा कहती हूँ कि हम वेस्ट में रहने वाले औरों को तो पीछे कर दें, उनके लिए तो दावत का वो दर्जा है कि जो फर्ज है। ये काफिर जितने आज हमारे इर्द गिर्द है, ये कल हमारे गिरेबान पकड़ेंगे, दुनिया में भी पकड़े हुए हैं, वो हमसे अपना हक लेने आते हैं, हम कहते हैं हमें कत्ल कर रहे हैं। भाई देखिए ना, आपकी कोई चीज को छीन के ले जाए तो जब उसको मौका मिलेगा वो आपसे वापस लेगा ना। उनकी हिदायत अल्लाह ने हमारे जरिए रखी थी, वकजालिका जाल ना को मुम्मतम वसता, हमने दी कोई नहीं, हम आपस में खो गए। अब वो हमसे लेने आते हैं तो गुस्से में मार देते हैं हमें, गोलियां चलाते हैं, तोपों के आगे रखते हैं, भूनते हैं हमारे बच्चों को, क्योंकि तुमने उनकी चीज नहीं उनको दी, तुम अपनी चीज उनको दो, उनको बताओ क्या खैर है, क्या अल्लाह की मोहब्बत है। कभी भी दुश्मनियां नहीं होंगी इस्लाम के साथ लोगों को, यकीन करें। आप सीरत पढ़े, मैंने माशाल्लाह अभी रिसेंटली दोबारा पूरी कराई है, कई दफा पढ़ाई मैंने, नहीं अल्लाह के नबी के कोई ऐसे दर सुने, जमा किया और सबको लाओ, मदीना के सारे मर्दों को बुला के लाओ, रहने को, और अल्लाह के बंदो जमात से नमाज पढ़ा करो, और बीबियों बहनों जरा पर्दे किया करो, और भाइयों नमाज ही घर ही पढ़ लिया करो, पढ़ो। मुझे नहीं ये स्टाइल मिलता कहीं भी, मुमकिन ही नहीं। इवन देखिए, सबसे गिरा हुआ शख्स मक्का का अगर आप समझे ना, तो अबू जहल था, कि जिसको अल्लाह के नबी ने फिरौन कहा उम्मत का, वो भी कहता था कि मुझे पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सच्चे हो, इस्लाम ठीक मजहब है, लेकिन मैं इसलिए नहीं इसमें आता कि मुसलमान होने के बाद मुझे नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, रोजे रखने पड़ेंगे, और शराब और जो कुछ भी चीज है उससे रुकना पड़ेगा, और मैं इसके लिए भी तैयार नहीं। मुसलमान होने का मतलब ये था कि टोटली सरेंडर, वला तमोतुन्ना इल्ला वान्तुम मुस्लिमून। ये तो आज हम मुसलमानों ने लूप होल ढूंढ लिए, सच्ची जो बात है, पढ़ना नमाजें फिर जो मर्जी करो, दे दो सकाते, कुछ नहीं होता, फिर भी बथेरा है, और भी आ जाएगा, लेकिन रहना अपने काम पे, जो गलत सलत है। आप देखिए कि एक शख्स पूरी की पूरी गलत चीज की कमाई उखाता है, मिसाल है कोई भी एक चीज, सूद कह लें, शराब कह लें, ये दो ही बड़े फितने, और गैम्बलिंग कह लें। एक बंदा दिन में 3 मील्स खाता है इस खाने के, और उसको परवाह भी नहीं, वो कहता है इट्स ओके, क्या करूं और क्या करूं। और एक बंदा है कि अगर 3 लुक में उसके पेट में चले जाएं, तो वो कहता है पता नहीं इस दौरान जो नमाज पढ़ी है वो गई कि नहीं गई, फर्क हालत है कि नहीं। एक बंदा है जिसके 3 घंटे जाया हो जाते हैं, वो कहता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और एक बंदा है जिसकी 3 मिनट जाया हो जाते हैं, वो कहता है ये क्या मैंने अपनी जिंदगी के 3 घंटे जाया कर दिए। आप देखिए दिन रात हम अपनी जिंदगी में किस तरह से नफा और नुकसान तोल के देखें, तो हमें पता लग जाए कि हम किधर है और किधर नहीं है, करने का काम हम नहीं कर रहे और हम कहाँ खो गए। ये नमाजे रोजे हमें नहीं बचाएंगे, नमाजे पढ़ने वाली कौम, परसों आपने स्क्रीन पर देखा लाखों की तादाद में हाजी और उमरे वाले वहां, क्यों उम्मत मुस्लिमा का हाल नहीं बदल रहा? क्या नमाजे नहीं पढ़ते लोग? बहुत पढ़ते हैं माशाल्लाह। मुझे किसी ने तस्वीर भेजी कि कुरान जहां छपते हैं उस फैक्ट्री की ना, तो यूं पाइल्स के पाइल्स कुरान पाक के नुस्खे पड़े हैं, तो मेरी तो आंखें छलक पड़ती हैं। कुरान तो है हामिले कुरान की तरह, नमाज तो है लेकिन नमाजी की तरह, मस्जिदें तो है लेकिन रूह की तरह। मैं कहती हूँ आज मस्जिदें बनाने की कतन जरूरत नहीं, अल्लाह ने तो कहा मैंने इस उम्मत के लिए पूरी जमीन मस्जिद बना दी है, हदीस है। कहाँ जाएंगे? जहां बैठेंगे मसल्ला डालेंगे पढ़ लेंगे, इस वक्त मदरसे बनाने की जरूरत है, वो नमाजी पैदा करो। क्यों मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन ना सका। और मिसाल है देखिए, फिर अब इसको पता नहीं आपके लेवल से मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। नमाजी आपने मस्जिद बना दी, आप बड़े खुश हैं 50 लोग नमाज पढ़ने आए, हम देखिए बदगुमानी नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको सिर्फ सोचने का अंदाज दे रही हूँ। आप कहते फलां मस्जिद 100 लोग आते हैं नमाज पढ़ने, ठीक है, कितनों की कबूल है, कितनों की कमाई खराब है और वो फिर नमाज पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सबक पीछे से फिर देखती हूँ जाके, तो हमने पढ़ा था ना आयातें बय्यिनात, खाना काबा और हरम, कि वहां कितनी निशानी, आपको कुछ लिखाई भी थी, बैतुल्ला और जमजम और ये सारी, तो उसमें फिर मैंने एक बार अल्लाह अकबर कि ये जो कंकरियां मारते हैं ना, आपको पता है कि हर साल लाखों लोग, और 3 दिन तक साथ साथ कंकरियां भी मारते रहे, तो 21 कंकरियां तो हो गई ना, कहाँ जाती हैं कंकरियां। कहते हैं कि जिनका हज कबूल हो जाता है फरिश्ते उनकी कंकरियां उठा के ले जाते हैं, और जो वहां पड़ी होती है ना, ये उनकी होती है जिनके हज कबूल नहीं हुए। क्या बातें करते हैं हम, क्या करने अपने 100 लोगों को नमाज पढ़ा के, अगर उनका अकीदा खराब है, शराब बेच के कोई आता है और अगर नमाज पढ़ जाता है, मैं नहीं कहती ना पढ़े, इंशाल्लाह उसकी नमाज उसको उस चीज से दूर करेगी, लेकिन आप बताइए हम बेसिक्स पे क्यों नहीं जाते कि यदून इलल खैर, अकीदे खराब, दिल में बुत बैठे हुए हैं, गलत काम करते हैं, हमारे सर से पांव तक, यकीन करें कि एक किसी ने मुसलमानों का मजाक उड़ाया हुआ था कि सिर्फ अंडर गारमेंट्स पहने हुए लड़की ने और सर पे टाइट हिजाब लिया हुआ है और खुले मजार में वो नमाज पढ़ रही है, कि उन्होंने हमारी मुसलमान बच्चियों पे टॉन्ट किया हुआ था कि देखो ये सर के ऊपर एक कपड़ा बांध के खुद को क्या समझती है, जिस्म का तो एक एक अंग दिखता है इनका, यकीन करे। और काफिर दुश्मन कोई भोला नहीं है, हम भोले हैं, हम बेवकूफ हैं। आज पता नहीं अल्लाह के नबी की रूह को क्या होता होगा, कितनी तकलीफ होगी, पता भी नहीं। आप जाइए, मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, छुट्टियों में कर लें ये काम, 10 लोगों से खड़े हुए राह चलते बात करते दोस्तों में घरों में, पूछिए ये तो अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, मकसद क्या है। बहुत अच्छे मकसद में भी होंगे तो कहेंगे नमाज रोजे के लिए, नमाज रोजा किया करो, हज पढ़ा किया करो, जाओ जी जुम्मा पढ़ा करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मनहज है, ये 3 काम वो हैं जिसको ना किया तो उम्मत नहीं बचेगी। पहनो अच्छे कपड़े जितने मर्जी, इज्जत क्या हमारी दुनिया में, कोई इज्जत है? हम अपनों जैसों में इज्जत बना लेते हैं ना, कोई इज्जत नहीं है। हम जाते हैं वो अंदर पीछे से हंस रहे होते हैं कि ये देखो कैसे है पाकिस, ये देखो देसीस, ये हम तो, हमारे तो बच्चे खुद हमारे लोगों को नहीं पसंद करते हैं। कहते हम नहीं जाते देसी रेस्टोरेंट्स में, हमें देसीज नहीं अच्छे लगते, ये देसीज ड्रेस हमें नहीं पसंद। हमारे अपने बच्चों को शर्म आती है, आप खुद जाके अपने बच्चों से पूछिए कि आप शलवार कमीज जो ढीली ढाली जो खुली लंबी जो पाँव तक छुपाती है, ढीला कपड़ा कोई भी, आप इसमें जा सकती हैं किसी जगह खुलेआम, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी? कहेंगे नहीं। देखते हैं बहुत सारे माशाल्लाह, लेकिन जिनकी सोच बिगड़ गई, जिसको मैं कहती हूँ कि बहा के ले गया नॉन मुस्लिम कल्चर, अल्लाह कहते तुम लोगों को खैर देते आज तुम्हें मिल रही होती। यकीन करें आज आप जब दीन का काम करने लगते हैं ना, कहाँ से खैर आती है? कल आप लोगों की बातें, कुछ आपके तोहफे बातें, बाद में भी रिस्पॉन्स आता है, तो मैं घर जाके यही शेयर कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ, कौन है जो किसी के दिल में ये जज्बे डाले, मेरी जुबान में तो ना असर है ना ताकत है। लेकिन ये आपका अपना मन आपको कहता है कि वो मकसद जिसको आज दुनिया खो के सिर्फ रस्मी दीनदारियां इबादत खाने कायम करती है, अगर इस मकसद पे आज हमारी दौलत तो छोड़े, वो तो बहुत छोटी बात है, जान माल औलादे भी लग जाएं, तो मैं कहती हूँ दुनिया हमें दुआएं देगी। ऐसे लोगों को फिर मुजद्दद कहा गया, पढ़ के देखिए, मुजद्दद अल्फ़े सानी का नाम आपने सुना होगा। बरेसगीर पाक हिंद में जब मुसलमानों का डिक्लाइन शुरू हुआ, अलामा इकबाल क्या रोते थे, बड़ा प्यारा शेर है उनका, मुझे याद नहीं है, लेकिन खुलासा क्या है कि कहते हैं कि अल्लाह दुनिया में तेरा नाम रहे हम तो इसलिए जीते हैं, यानी हमारे तो जीने का मकसद ये कि अल्लाह तेरा नाम चलता रहे, मेरी तो जिंदगी का मकसद ही ये है। वो भी एक और भी शेर है ना कि तेरे दीन की सरफराजी मैं इसीलिए मुसलमान मैं इसीलिए गाजी, पता नहीं क्या बुरा शेर है, लेकिन उसका मकसद कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, अल्लाह तेरा दीन महफूज हो जाए। इस वक्त जितनी जरूरत उम्मत मुस्लिमा को ये सबक याद दिलाने की है, अल्लाह करे या मुरूना बिल मारूफ और यनहौना मुनकर, और हम मुनकर का खुद शिकार हो जाएंगे तो उनको कैसे रोकेंगे, सिर्फ असिमिलेट होने के लिए इस सोसाइटी में पनपने। और माने ना माने माँ बाप के भी दिल में यही खौफ है कि हमारे बच्चे खराब होंगे, यानी हैरत की बात है कि अगर कोई हिजाब कर ले या निकाब कर ले तो अल्लाह तो कहते सिक्योर हो गए हो, तो माँ बाप कहते नहीं अब वो निकाब पहनती है तो फिक्र है कि पता नहीं बाहर उसको कुछ छेड़े ना, यानी खुले फिरो तो इट्स फाइन, सब देखें तुम्हें, जिसका दिल चाहे पैगाम में मोहब्बत दे दे तुम्हें, नो प्रॉब्लम, डिसेंट है, कोई बात नहीं, वी विल एक्सेप्ट इट। लेकिन जो जरा इस्लामिकली जाते हैं तो लोगों को गम है, हम जैसे लोग जाते हैं तो शायद लोग दोहरी तस्वीरें पढ़ते हैं कि अल्लाह आपको एयरपोर्टों से खैर से गुजार दे, कि आपके हाल हुलिये से लगता है कि आप मुसलमान हैं, यानी बिल्कुल वो कहते हैं ना खोपड़ी उल्टी हो गई आज के मुसलमान की, वो कहते हैं ना जो ना था खूब वो खूब हुआ, गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर, शेर आते हैं कि सारे गलत हैं ये लिखिएगा नहीं, लेकिन सिर्फ मफहूम बता रही हूँ, जो ना था खूब वो खूब हुआ बतदरीज, पहले वो चीजें बुरी लगती थी, आहिस्ता आहिस्ता हम रचे बसे सोसाइटी में, हमें अच्छा लगने लग गया, वही नाखूब यानी बुरी चीज अब खूब लगती है, क्योंकि जब कौमें गुलाम बन जाती हैं तो वो तो दूसरे मुल्कों के झंडों के कपड़े भी पहन के खुश होते हैं। तो दुआ कीजिए कि ये सबक समझ आ जाए, बल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर, पहला दर्जा, फिर दूसरा यामुरूना बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म दो, तुम क्लीन लोग हो, तुम सफाई पसंद लोग हो, तुम एक्सट्रीमिस्ट हो, लेकिन क्या एक्सट्रीमली क्लीन, एक्सट्रीमली प्योर, तुम गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम उठ के खुद सफाई शुरू कर देते हो। या मुरूना बिल मारो, गंदी सोसाइटी में मुसलमान खुश नहीं रह सकता। या तो अपना हिस्सा डालेगा या उसको छोड़ देगा। मैं ऐसे ही सोच रही थी, शायद उस दिन क्लास में भी बात हुई तो मेरे जहन में आ रहा था कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात आपसे भी छेड़ी थी मैंने, कि आप देखिए कि जो मोटिव्स होते हैं बाहर के मुल्कों में रहने के, हम सब के, वो सारे मोटिव्स जिसमें लग्जरियस लाइफ, सिक्योरिटी, मनी, आज़ादी, ठीक है, और अल्लाह के दीन को फैलाना, नॉन मुस्लिम से इंटरेक्शन, ये सिर्फ पांच हम डिस्कस कर लें। आप देखिए कि अगर आपको अपने मुल्क में कोई दावत दे दे कि आ जाओ, जितनी पे इधर थी इतनी पाउंड्स में वहां मिलेगी, सिक्योरिटी उतनी जितनी इधर, लग्जरीज उतनी इतनी, बिजली नहीं जाएगी, आप में से कोई रुकेगा इधर? मैं रुकूंगी अगर मैं इस मकसद से यहां आऊंगी? मैं क्यों अपनी माँ से दूर हूं, मैं अपने भाई बहनों से क्यों दूर हूं? मुझे अपना मुल्क प्यार है, मैं चली जाऊंगी ना। ये चार चीजों वाले जरूर चले जाएंगे, पांचवा नहीं जाएगा। यदुन इलल खैरि व यामुरूना बिल मारूफ। और दुख की बात बताऊं, आज लोग जो तबलीग के नाम पे भी तबलीग करते हैं ना, जिसको दावत, वो भी कहते नहीं अभी सिर्फ मुस्लिम्स को करो, नॉन मुस्लिम्स को नहीं करते। जहां तक मैंने सुना है कुछ ग्रुप्स कहते खुद को दावत देने वाले हैं, लेकिन वो सिर्फ मुस्लिम्स टू मुस्लिम पे बात करते हैं, कहते नहीं अभी हम मक्की दौर में। आई डोंट नो मक्की दौर कैसा है। बहरहाल समझिए, हम सबको मिलके आज तक ऐसी उम्मत तैयार कर देनी चाहिए थी कि जिनके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत भरी हो, वो इतना प्योर किरदार बच्चा हो कि वो बुराई गंदगी के माहौल में रहे ना, और जाके वहां वो अल्लाह की बात फैला दे। ऐसे लोगों ने आप देखिए 18 साल की उम्र में अबू जहल को मारा था, बात जो नहीं मान रहा था, नबी को गाली देता था। आप पढ़ के देखे लश्कर उसामा, 17 साल का उसामा कैसे एक लश्कर का सरदार बन के जा रहा है। आज 17 साल के बच्चे को मेरे और आपके, क्या दर्द है इस्लाम का। जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही। और याद रखिए, अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बचाए, दुख से बचाए, और औलादों के गम को ना अल्लाह किसी को दिखाए, लेकिन जवान पहले जा रहे हैं बूढ़ों की नस्बत। हदीस में आता है क्यामत की निशानी है कि कुर्बे क्यामत जवान मौतें कसरत से होंगी। और वजह भी साफ है कि जवानों की जिंदगी इतनी लग्जरियस और इतना उनके पास माशाल्लाह कसरत से है कि वो तो एक झटका नहीं बर्दाश्त कर सकते। जिंदगी बिल्कुल अननेचुरल है, मशीन की तरह सुबह और शाम हम चल रहे हैं। अब आप देखिए कि आपको ये तीन बातें समझ आई, अब सवाल पैदा होता है कि ना करें तो क्या होगा, तो अल्लाह ताला अगले ही आयतों में आपको नक्शा दिखाते हैं।